ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा ने बजट से संबंधित आर्थिक विधेयक 2083 और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी 2083 किए पारित। सड़क दुर्घटना में कमी, कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम से उत्पन्न समस्याओं के समाधान सहित विभिन्न मुद्दों पर सांसदों ने किया सरकार का ध्यान आकृष्ट। पशु सेवा विभाग ने बताया काठमांडू उपत्यका में बर्ड फ्लू फैलने में कौओं का कारण और सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने बजट से संबंधित आर्थिक विधेयक 2083 को बहुमत से तथा राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने घोषणा की कि अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले द्वारा प्रस्तुत दोनों विधेयक सदन से पारित हो गए हैं। आर्थिक विधेयक पर 7 और राष्ट्रीय ऋण विधेयक पर 3 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अर्थमंत्री द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को छोड़कर शेष प्रस्ताव सदन ने बहुमत से अस्वीकार कर दिए। अर्थमंत्री डॉ वागले ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि बजट के माध्यम से ऐतिहासिक कर सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालयों की फीस पर लगाया गया 3% कर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों पर बोझ डालने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि चालू आर्थिक वर्ष में पूंजीगत व्यय 35% तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगले आर्थिक वर्ष के बजट में सुधार और परिणाम सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। चर्चा में सांसदों ने आयकर से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करने, कर प्रणाली को सरल बनाने और निजी क्षेत्र के लिए समझने योग्य बनाने की मांग की। उन्होंने पूंजीगत व्यय बढ़ाने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित कर व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय ऋण विधेयक पर चर्चा के दौरान अर्थमंत्री ने कहा कि विदेशी ऋण सिर्फ निर्धारित परियोजनाओं और आधारभूत संरचना के विकास के लिए लिया जाता है। उन्होंने बताया कि आंतरिक ऋण भी ऊर्जा तथा अन्य उत्पादक परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि ऋण का उपयोग ऐसी परियोजना में होना चाहिए जो भविष्य में स्वयं ऋण चुकाने की क्षमता विकसित करे। बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से कानून, न्याय एवं संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने महालेखा परीक्षक की 63वीं वार्षिक रिपोर्ट 2083 सदन में प्रस्तुत की। सभामुख ने राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त विधेयकों के प्रमाणीकरण संबंधी पत्र की भी जानकारी दी। इससे पहले सांसदों ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने और यातायात प्रबंधन में सरकारी निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में जानबूझकर वाहन चढ़ाकर हत्या करने की घटनाओं को भी दुर्घटना बताकर समझौता कराया जा रहा है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जल्दबाजी में एसईई और कक्षा 12 के परिणाम जारी करने के कारण अनेक मेधावी विद्यार्थियों को भी नॉन ग्रेडेड दिखाया गया, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। सांसदों ने फीफा द्वारा एनफा पर लगाए गए अनिश्चितकालीन निलंबन पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे देश की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदेह बताया और जल्द निलंबन हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि सड़क यातायात प्रबंधन और सरकारी सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सरकारी निकायों पर आर्थिक दंड लगाने का कानूनी प्रावधान किया जाए। बीपी राजमार्ग पर रोशी नदी क्षेत्र में जोखिम के बीच यातायात संचालन का मुद्दा उठाते हुए सांसदों ने वर्षा ऋतु को देखते हुए समय रहते आवश्यक कदम उठाने की अपील की। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेपाल भारत सीमा संबंधी बयान का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने सदन में विरोध दर्ज कराया। नेकपा एमाले के सांसद डॉ पुष्पराज खडेल ने कहा कि सीमा विवाद पर दिए गए बयान के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। श्रम संस्कृति पार्टी के मुख्य सचेतक आरएन राय ने कहा कि संसद में जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा चितवन में स्पष्टीकरण देना उचित नहीं था। उन्होंने प्रश्न किया कि सीमा संबंधी उनका विवादित बयान देश हित में कैसे माना जा सकता है। प्रतिनिधि सभा की आज हुई दूसरी बैठक ने 4 अलग अलग विधेयकों पर विचार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक ने सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083, संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तीसरा संशोधन विधेयक 2083, सहकारी पहला संशोधन विधेयक 2083 और स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन विधेयक 2083 पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बताया कि इन विधेयकों पर संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक सांसद संघीय संसद सचिवालय की विधेयक शाखा में अपने प्रस्ताव दर्ज करा सकते हैं। इसी बैठक में प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य राजेंद्र खरेल के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। नेपाली कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 2056 के आम चुनाव में काभ्रे प्लानचोक से निर्वाचित खरेल का 7 आषाढ़ को उपचार के दौरान निधन हो गया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 18 आषाढ़ गुरुवार सुबह 11 बजे होगी। पशु सेवा विभाग ने कहा है कि काठमांडू उपत्यका में कौओं के माध्यम से बर्ड फ्लू का संक्रमण फैल गया है। विभाग के महानिदेशक डॉ उमेश दहाल ने बताया कि संक्रमित कौवे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर संक्रमण फैला रहे हैं। उनके अनुसार सदर चिड़ियाघर सहित कई स्थानों पर इसी कारण संक्रमण पहुंचा है। उन्होंने बताया कि कौओं में संक्रमण लगभग 21 दिनों तक सक्रिय रहता है, जिससे बीमारी तेजी से फैल सकती है। वर्तमान में काठमांडू उपत्यका के 3 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। डॉ दहाल के अनुसार पूरे देश के 11 जिलों में लगभग 100 स्थानों पर संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि उपत्यका में कीर्तिपुर और कागेश्वरी मनोहरा को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलने वाला अत्यधिक संक्रामक और अधिक मृत्युदर वाला रोग है। कौओं में संक्रमण मिलने के बाद विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने उपमहानिदेशक के नेतृत्व में बर्ड फ्लू नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और संघ प्रदेश तथा स्थानीय स्तर के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा है कि समय के अनुरूप नीतियों, कार्यशैली और संगठनात्मक अभ्यास में सुधार करते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत बनाया जाना चाहिए। आज जननेता मदन भंडारी की 75वीं जयंती के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन को समयानुकूल परिवर्तन करना जरूरी है। कार्यक्रम में मदन भंडारी फाउंडेशन द्वारा मदन भंडारी राष्ट्रीय पुरस्कार 2082 लेखक तथा अध्येता रमेश रुचेन राय को प्रदान किया गया। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश और जनता के हितों के विरुद्ध कोई गलती नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के बीच अनावश्यक भ्रम फैलाया गया है। मौके पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा और जनाधिकारों के संवर्धन के लिए वामपंथी शक्तियों के बीच सहयोग आवश्यक है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल ने कम्युनिस्ट एकता को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झरनाथ खनाल ने कहा कि कम्युनिस्ट दलों के बीच एकता का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एकता की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने पर जोर दिया। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को कल से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बीते माह 1 गते से इस योजना को बंद कर दिया था, जिसे अब 15 आषाढ़ से दोबारा शुरू किया जा रहा है। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉ सुभाष प्रसाद आचार्य ने बताया कि फिलहाल ये सुविधा बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी में उपलब्ध होगी और कुछ दिनों के बाद अन्य सेवाओं में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दिए गए उपचार का भुगतान न मिलने के कारण अस्पताल ने ये सेवा बंद कर दी थी। उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव ने शिक्षा को अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर जोर दिया है। मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेज की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और आधुनिक प्रौद्योगिकी को विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। वैदेशिक रोजगार धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 25 वर्षों से विभाग में लंबित पड़े हजारों मामलों और जांच संबंधी फाइलों की खोज, व्यवस्थित अभिलेखीकरण और डिजिटलाइजेशन का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वैदेशिक रोजगार विभाग के अनुसार साल 2057 विक्रम संवत से लंबित पड़े मामलों और जांच से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों की खोज कर उनका व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 25 वर्षों से डंप अवस्था में पड़ी हजारों फाइलों को वर्षवार वर्गीकृत कर उनका भौतिक अभिलेख प्रबंधन किया गया है। विदेशी रोजगार धोखाधड़ी की शिकायतों में वृद्धि के बाद युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने मामलों को और जांच को उच्च प्राथमिकता देते हुए विभाग को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में मामलों और जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने की तैयारी की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरब के रास तनोरा में आज दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सऊदी अरब के ही नागरिक थे। हालांकि क्रैश की वजह की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। फ्रांस के नंशी शहर के पास ट्रॉम्बलेन शहर में एक प्लेन क्रैश होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस के गृह मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन पैराशूटिंग सिखाने वाले एक स्कूल का था। प्रशासन ने एजेंसी को बताया कि इस हादसे में पायलट और सभी 10 यात्रियों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्लेन में स्काई डाइविंग ट्रिप पर जा रहे लोगों का एक ग्रुप सवार था। पुलिस ने लोगों से ट्रॉम्बलेन में एयरपोर्ट के पास के इलाकों में जाने से पूरी तरह से बचने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा ने बजट से संबंधित आर्थिक विधेयक 2083 और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 किए पारित। सड़क दुर्घटनाओं में कमी, कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम से उत्पन्न समस्याओं के समाधान सहित विभिन्न मुद्दों पर सांसदों ने किया सरकार का ध्यान आकृष्ट। पशु सेवा विभाग ने काठमांडू उपत्यका में बर्ड फ्लू फैलने में कौओं को बताया कारण और सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।